एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं एरिक लार्सन की किताब द स्प्लेंडेड एंड द वाइल्ड के बारे में।
हाँ, ये किताब हमें ले जाती है द्वितीय विश्व युद्ध के एक बहुत ही नाजुक दौर में।
बिल्कुल, वो एक साल मई 1940 से मई 1941 जब ब्रिटेन लगभग अकेला खड़ा था नाजी जर्मनी के खिलाफ
और विंस्टन चर्चिल ने कमान संभाली थी, मतलब बहुत ही मुश्किल वक्त था।
और ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, है ना, इसमें आज के लिए भी बहुत कुछ है।
हाँ बिल्कुल, संकट के समय लीडरशिप कैसी होनी चाहिए, क्या सिर्फ प्लान बनाना काफी है
या फिर आम लोगों का वो जज्बा, वो साहस, वो कहाँ से आता है जब हालात इतने बुरे हों।
सही कहा, ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये इंसानी हिम्मत की कहानी है, आज भी उतनी ही जरूरी।
तो चलिए शुरू करने से पहले लेखक के बारे में थोड़ी बात कर लें। एरिक लार्सन।
हाँ, एरिक लार्सन अमेरिका के जाने माने लेखक हैं, खासकर नैरेटिव नॉन फिक्शन के लिए।
नैरेटिव नॉन फिक्शन मतलब सच्ची घटनाओं को कहानी की तरह कहना।
बिल्कुल, और लार्सन इसमें माहिर हैं। गहरा रिसर्च और किस्सा कहने का अंदाज दोनों कमाल के हैं।
उनकी खासियत यही है कि वो बड़ी बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे जो छोटी छोटी इंसानी कहानियां हैं उन्हें ढूंढ निकालते हैं।
हाँ, किरदारों के डर, उनकी उम्मीदें, उनकी रोज की जद्दोजहद, सब कुछ जैसे जिंदा हो उठता है।
उनकी पहले की किताबें जैसे द डेविल इन द व्हाइट सिटी, वो भी काफी पसंद की गई थीं।
बिल्कुल, और इस किताब के लिए, मतलब द स्प्लेंडेड इन द वाइल्ड के लिए, लार्सन ने कुछ ऐसी डायरियों और दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जो पहले पब्लिश नहीं हुई थी।
अच्छा, जैसे किसकी?
खासकर चर्चिल की बेटी मैरी और उनके निजी सचिव जॉन कोलविले, इनकी रोज की बातें, इनकी डायरियां।
ओ, तो इससे तो बिल्कुल अंदर का नजरिया मिला होगा, है ना? मतलब सिर्फ जंग की बातें नहीं।
हाँ बिल्कुल, लोगों का मनोविज्ञान, वो क्या महसूस कर रहे थे, डर से कैसे निपट रहे थे, ये सब पता चलता है।
ये बात इसे खास बनाती है, सिर्फ नेताओं की कहानी नहीं, आम लोगों की भी कहानी।
तो चलें अब किताब के अंदर झांकते हैं।
हाँ बिल्कुल, तो जैसा हमने कहा, ये कहानी है मई 1940 से मई 1941 की, चर्चिल के प्रधानमंत्री बनने के बाद का पहला साल।
वो वक्त जब जर्मन एयरफोर्स, लुफ्टवाफे, ब्रिटेन पर, खासकर लंदन पर लगातार बम बरसा रही थी।
इसी को ब्लिट्स कहते हैं ना, वो महीनों तक चलने वाली रात की बमबारी।
हाँ, फ्रांस हार चुका था, पूरा यूरोप एक तरह से हिटलर के कब्जे में था और लग रहा था कि ब्रिटेन की बारी है।
और किताब का मकसद सिर्फ ये बताना नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये महसूस कराना है कि भाई उस वक्त लोग कैसा फील कर रहे थे, चर्चिल, उनके आसपास के लोग, आम ब्रिटिश नागरिक।
बिल्कुल, ये सिर्फ मिलिट्री हिस्ट्री नहीं है, इसमें साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है।
हाँ, कैसे लीडरशिप, डर, प्यार और हिम्मत ने मिलकर एक देश को टूटने से बचाया जबकि हार एकदम सामने दिख रही थी।
लार्सन खुद इस दौर को दो शब्दों में बताते हैं, स्प्लेंडेड और वाइल,
शानदार और घिनौना।
हाँ, शानदार था चर्चिल का नेतृत्व, उनके भाषण, लोगों का हौसला,
और घिनौना था वो बमबारी का आतंक, मौत, तबाही, डर।
और किताब यही दिखाती है कि देश की असली ताकत सिर्फ फौजी ताकत नहीं होती
बल्कि लोगों का वो मानसिक लचीलापन और ऐसा लीडर जो मुश्किल में उम्मीद जगाए।
और चर्चिल ने यही किया,
उन्होंने लोगों के मोराल को, उनके मनोबल को ही हथियार बना लिया
जो शायद तोपों से भी ज्यादा असरदार था उस वक्त।
बिल्कुल, चलिए तो उस एक साल के सफर पर चलते हैं, घटनाएं और उनके पीछे छिपी मतलब।
शुरुआत होती है मई 1940 से, ब्रिटेन संकट में, नॉर्वे में नाकामी, पिछली सरकार गई,
जर्मनी फ्रांस को रौंद रहा था
और इसी माहौल में चर्चिल प्रधानमंत्री बने।
और ये भी याद रखना चाहिए कि चर्चिल उस वक्त कोई बहुत पॉपुलर लीडर नहीं थे।
सही कहा, उनका ट्रैक रिकॉर्ड मिला जुला था, कई लोग उन्हें जिद्दी मानते थे, भरोसे के लायक नहीं समझते थे,
लेकिन हालात ऐसे थे कि वही दिख रहे थे जो हिटलर के आगे शायद ना झुकें।
हाँ, और आते ही सामना हुआ डनकर्क का, लाखों सैनिक फ्रांस में फंस गए थे,
उनका वहां से निकलना एक चमत्कार ही था।
बिल्कुल, और चर्चिल ने इस हार को भी हौसला बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया, गजब की बात है।
और आते ही वो मशहूर भाषण दिया, खून, मेहनत, आंसू और पसीना,
कोई झूठी उम्मीद नहीं, सीधी बात कि भाई मुश्किल वक्त आने वाला है, तैयार रहो।
इस ईमानदारी ने शायद लोगों में भरोसा जगाया।
फिर आई 1940 की गर्मियां, फ्रांस गिर गया, ब्रिटेन अकेला,
देश के अंदर भी दबाव था, कुछ लोग कह रहे थे हिटलर से बात कर लो।
हाँ, लॉर्ड हैलीफैक्स जैसे लोग, उन्हें लग रहा था लड़ना बेकार है, समझौता ही सही है।
लेकिन चर्चिल, वो डटे रहे।
बिल्कुल, न सिर्फ अपनी कैबिनेट को मनाया बल्कि पूरे देश को लड़ने के लिए तैयार किया।
उनका वो भाषण, हम समुद्र तटों पर लड़ेंगे, हम कभी सरेंडर नहीं करेंगे, इसने जैसे जान फूंक दी।
हाँ, और दूसरी तरफ तैयारी भी शुरू हुई। लॉर्ड बीवरब्रुक को लगाया विमान बनाने के काम पर तेजी से,
और फिर शुरू हुई बैटल ऑफ ब्रिटेन, अगस्त सितंबर 1940।
आसमान में जंग, आरएएफ बनाम लूफ्टवाफे।
इसे विजर्ड वॉर भी कहते हैं ना, क्योंकि रडार का इस्तेमाल हुआ था।
हाँ बिल्कुल, रडार उस वक्त जादू जैसा था, दुश्मन के प्लेन का पहले ही पता चल जाता था।
लासन बताते हैं कैसे मुट्ठी भर थके हुए ब्रिटिश पायलटों ने जर्मनी को रोका।
हाँ, एक वक्त तो लगा कि ब्रिटेन हार जाएगा, आरएएफ के अड्डे तबाह हो रहे थे,
लेकिन तभी हिटलर ने रणनीति बदल दी।
हाँ, बर्लिन पर एक छोटी सी बमबारी हुई तो गुस्से में हिटलर ने लंदन और दूसरे शहरों पर बम गिराने का हुक्म दे दिया, आरएएफ अड्डों को छोड़कर।
और यहीं से शुरू हुआ द ब्लिट्स, सितंबर 1940 से मई 1941 तक, रात की भयानक बमबारी।
और यहाँ लार्सन हमें आम लोगों की जिंदगी में ले जाते हैं, उनकी डायरियों के जरिए।
सोचकर ही डर लगता है, हर रात सायरन, धमाके, अंधेरा, आग।
लोग अंडरग्राउंड स्टेशनों में घरों के नीचे बने शेल्टरों में रातें काटते थे।
हिटलर का मकसद था डर फैलाना, हौसला तोड़ना,
लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा।
ये वाकई कमाल है। चर्चिल खुद जाते थे उन इलाकों में जहां बम गिरे थे, लोगों से मिलते थे।
हाँ, उनका खुद वहां मौजूद होना खतरों के बीच, ये लोगों के लिए बड़ी बात थी, हिम्मत बंधाती थी।
और इस साझा मुसीबत ने लोगों को अजीब तरह से जोड़ा भी।
बिल्कुल, बमबारी ने इरादे तोड़ने के बजाय और पक्के कर दिया। एक जिद आ गई लोगों में, लंदन कैन टेक इट,
लंदन इसे झेल सकता है, ये सोच बन गई।
फिर आई 1940-41 की सर्दियां, और मुश्किल, बमबारी जारी रही, कोवेंट्री जैसे शहर बुरी तरह तबाह हुए।
चर्चिल और उनके परिवार पर भी बहुत दबाव था, वो वीकेंड पर चेकर्स जाते थे शहर से दूर, पर खतरा तो वहां भी था।
इसी दौरान चर्चिल की डिप्लोमेसी भी चल रही थी, खासकर अमेरिका से मदद लेने की कोशिश।
हाँ, राष्ट्रपति रूजवेल्ट के साथ रिश्ता बनाना, उन्हें समझाना कि ब्रिटेन की लड़ाई सिर्फ ब्रिटेन की नहीं है।
और ये आसान नहीं था, अमेरिका युद्ध से दूर रहना चाहता था,
लेकिन चर्चिल लगे रहे और आखिरकार कोशिश रंग लाई।
हाँ, लैंड लीज एक्ट पास हुआ, जिससे ब्रिटेन को जरूरी सामान, हथियार वगैरह उधार पे मिलने लगे।
ये ब्रिटेन के लिए एक लाइफलाइन जैसी थी।
बिल्कुल। फिर आया 1941 का वसंत, लंदन पर हमले और भी भयानक हुए,
संसद भवन तक पे बम गिरा।
लेकिन लार्सन ये भी दिखाते हैं कि इस तबाही के बीच भी जिंदगी चल रही थी।
हाँ, जैसे उनके स्टाफ में रोमांस, उनकी बेटी मैरी की सोशल लाइफ।
ये भी एक तरह का प्रतिरोध था, नॉर्मल जीने की कोशिश करना।
और कहानी पहुंचती है 10 मई 1941 को, ठीक एक साल बाद जब चर्चिल प्रधानमंत्री बने थे।
उस रात लंदन पर फिर एक भयानक हमला हुआ, लेकिन वो ब्लिट्स का आखिरी बड़ा हमला था,
क्योंकि हिटलर का ध्यान अब रूस की तरफ जा रहा था।
हाँ, और फिर वो रुडोल्फ हेस वाली अजीब घटना भी हुई।
अकेला नहीं रहा था, ये सचमुच उनका फाइनेस्ट आवर था।
तो ये तो हुई घटनाओं की बात, लेकिन सबक क्या है, और खासकर लीडरशिप के बारे में?
हाँ, ये बहुत अहम है। पहला सबक तो यही कि संकट में लीडरशिप का मतलब सिर्फ प्लान बनाना नहीं है।
बिल्कुल, चर्चिल मनोबल के महारथी थे, उनकी असली ताकत शायद लोगों की नब्ज पहचानने में थी।
वो जानते थे कि सच बोलना जरूरी है, चाहे कड़वा ही क्यों ना हो।
हाँ, और खुद खतरों के बीच जाना, इससे लोग जुड़ते हैं।
लार्सन उनकी कमजोरियां भी दिखाते हैं, उनका अड़ियलपन, उनका गुस्सा, वो कोई सुपर हीरो नहीं लगते।
और यही बात उन्हें ज्यादा मानवीय बनाती है। आज के लीडर्स के लिए ये बड़ा सबक है, सिर्फ डेटा नहीं, इमोशंस भी जरूरी हैं।
दूसरा सबक, शब्दों की ताकत। कहा गया कि चर्चिल ने अंग्रेजी भाषा को लामबंद किया और उसे लड़ाई में भेज दिया।
क्या बात है, उनके भाषणों ने सच्चाई भी बताई और जीत का यकीन भी दिलाया।
आज के जमाने में भी सही और प्रेरणा देने वाला कम्युनिकेशन कितना जरूरी है ना?
बिल्कुल। तीसरा सबक, और जो मुझे सबसे ज्यादा छू गया, वो है आम इंसान का लचीलापन।
हाँ, वो रिजिलियंस। हिटलर की बमबारी उन्हें झुका नहीं पाई।
साझा मुश्किलों ने लोगों को जोड़ा, वो मुश्किल में भी जीने का रास्ता निकालते थे, डार्क ह्यूमर का सहारा लेते थे।
अपनी रोज की जिंदगी जारी रखना, ये भी एक तरह की लड़ाई थी।
हाँ, ये जज्बा हम अपने आसपास भी देखते हैं, मुश्किल वक्त में लोग कैसे एक दूसरे का सहारा बनते हैं।
चौथा पॉइंट, वो पब्लिक और प्राइवेट लाइफ का मेल।
हाँ, लार्सन दिखाते हैं कि चर्चिल जैसे बड़े नेता भी अपनी पत्नी, बच्चों के लिए फिक्रमंद थे।
और उनके स्टाफ की डायरी से उस दौर का तनाव और करीब से महसूस होता है।
इतिहास बनाने वाले भी आम इंसान होते हैं अपनी निजी जिंदगियों के साथ।
इस किताब में कुछ बातें, कुछ कोट्स बहुत यादगार हैं।
हाँ, जैसे चर्चिल का वो कहना, मेरे पास खून, मेहनत, आंसू और पसीने के सिवा देने के लिए कुछ नहीं है।
कितनी ईमानदारी है इसमें, मुश्किल वक्त में सच्चाई बताना विश्वास बनाता है।
और वो संकल्प, हम कभी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे,
ये सिर्फ नारा नहीं था,
ये दुश्मन को और दुनिया को एक मैसेज था कि ब्रिटेन झुकेगा नहीं।
एक और जुमला, लंदन इसे झेल सकता है, ये लोगों की सोच बन गई थी।
पीड़ा को भी प्रतिरोध बना देना।
किताब का टाइटल ही देखिए, द स्प्लेंडेड एंड द वाइल्ड, शानदार और घिनौना।
उस दौर का विरोधाभास, हिम्मत भी और भयानक डर भी, दोनों साथ साथ।
और एक बात जो मुझे अच्छी लगी, चर्चिल ने लोगों को निडर होने की कला सिखाई।
मतलब डर खत्म नहीं हुआ, पर डर के बावजूद खड़े रहना सिखाया।
बिल्कुल, डर को स्वीकार करके उस पर हावी होने की कोशिश करना।
तो इन सब बातों से आज की जिंदगी के लिए क्या सीख सकते हैं? पहला तो कम्युनिकेशन का तरीका।
हाँ, चाहे ऑफिस हो या घर, ईमानदारी से बात करना, क्लियर विजन देना और खुद आगे बढ़कर मुश्किल का सामना करना।
सिर्फ दूर से ऑर्डर देना काफी नहीं।
दूसरा, वो व्यक्तिगत और सामुदायिक लचीलापन।
हाँ, ब्लिट्स में लोगों ने अपनी रूटीन बनाए रखी, एक दूसरे का साथ दिया, हंसी मजाक का सहारा लिया।
आज जब हम स्ट्रेस में होते, शायद ये तरीके हमारे भी काम आ सकते हैं। लोगों से जुड़ना, छोटे कामों में खुशी ढूंढना।
और तीसरा, लीडरशिप का मानवीय पहलू।
इमोशनल इंटेलिजेंस, समझना कि फैसले लेने वाले भी इंसान हैं और जिनके लिए फैसले लिए जा रहे हैं उनकी भावनाओं को समझना भी जरूरी है।
बिल्कुल, सहानुभूति, सहारा, विश्वास, ये मुश्किल समय में बहुत जरूरी हैं।
तो इस पूरी चर्चा के बाद मेरे लिए सबसे बड़ा टेक अवे है एक प्रमाणिक लीडरशिप की जरूरत।
हाँ, एक ऐसा नेता जो ताकतवर भी हो पर अपनी कमजोरियां भी समझे, जो सिर्फ दिमाग से नहीं दिल से भी जोड़े।
और मेरे लिए वो आम लोगों का जज्बा, डर के बीच भी रोजमर्रा की जिंदगी को थामे रखना, समुदाय में ताकत ढूंढना।
ये दिखाता है कि उम्मीद बनाए रखना कितना जरूरी है। शायद सबसे बड़ा प्रतिरोध बस डटे रहना ही था।
बिल्कुल,
ये सोचना भी दिलचस्प है कि कैसे ब्लिट्स के दौरान लंदन के लोगों ने अकेलेपन और डर के बावजूद समुदाय और रोजमर्रा की जिंदगी में एक ताकत खोजी। क्या ये कहानी हमें आज के दबावों और तनावों से निपटने का कोई रास्ता दिखा सकती है? ये सोचने वाली बात है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।